अब यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तذکرہ है। ये नहीं कहा बच्चा पैदा हुआ, बस जो पहले के हालात हैं उनका तذکرہ किए बगैर बात आगे बढ़ती गई। किस तरीके से, वअउहैना इला उम्मी मूसा, और हमने इल्हाम कर दिया उम्मे मूसा की तरह। यहाँ देखिए लफ्ज़ आया वही का, तो क्या उम्मे मूसा नबिया थी? नहीं। ये मुकाम नोट कर लीजिए इस बात में कि जो लोग हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को नबिया कहते हैं, क्योंकि उनके पास फ़रिश्ता आता था और वही की उन्होंने, तो आप देखिए कि उम्मे मूसा के पास भी फ़रिश्ता आया, हालांकि उनके नबी होने के बारे में किसी को नहीं तस्करा। इसी तरह पीछे वही का लफ्ज़ सूरत नहल में आया, शहद की मक्खी को भी फिर नबिया होना चाहिए। तो लिहाजा वही का सिलसिला जो है वो इसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखता। यहाँ मुराद है इल्हाम, दिल में ख्याल डाल देना, कोई ऐसा मामला हो जाना कि जिसके साथ इंसान को खुद ना पता चले। और बस दफ़ा इंसान जब किसी बहुत बड़ी मुश्किल में आता है ना, तो उसकी सोई हुई छुपी हुई सलाहियतें उभरने लगती हैं। इस किस्म के हालात आते हैं कि इंसान को खुद नहीं पता चलता कि अच्छा मेरे अंदर इतनी खूबियाँ थी, ये कैसे हुआ। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे जलजले के बाद बाज़ ज़मीनों के अंदर से सोना चांदी निकल आता है ना, इसी तरह हालात के थपेड़ों में से भी बाज़ दफ़ा इंसान के लिए हीरे मोतियों से ज़्यादा कीमती हालात निकल आते हैं। मूसा की माँ जो थी वो एक आम औरत थी, लेकिन नेक औरत थी, बनी इसराइल में से थी। इतनी नेक थी कि अल्लाह ताला ने उस औरत को एक नबी की माँ बनने के लिए मुंतखब कर लिया। हालात वही थे कि बच्चों के कत्ल का तस्करा था, 1 साल के लड़कों को मरवाते, दूसरों को ज़िंदा रखते, रैंडमली कत्ल करते थे। क्यों? इसलिए कि सारे ही मर जाएंगे तो फिर बनी इसराइल की नस्लें ख़त्म होंगी। और ये सिलसिला कोई 1-2 साल नहीं रहा, कई साल रहा। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने मूसा की माँ को कहा, अन अर्दी ही, इसे दूध पिलाती रहो, बेख़तर दूध पिलाओ। मूसा उस साल में पैदा हुए जिस साल में बच्चों के कत्ल का हुक्म होता था। अगर सिंपल सी बात होती, 2 लफ्ज़ों की बात है, मूसा को अल्लाह ताला पैदा करवा देते उस साल में जिस साल में बच्चे या बेटे ज़िंदा रखे जाते थे, बात ख़त्म। अक़ल तो यही कहती है ना। लेकिन यहाँ आपको बार बार सूरत कसस में ये मैसेज मिलेगा कि मुश्किल राहों में से खैर की राहें निकलेंगी। वइन्नमा अल-उस्री युस्रा, वइन्नमा अल-उस्री युस्रा। अल्लाह वो नहीं है जो फिरौन से डरे। अगर अल्लाह फिरौन से डरता तो वाकई मूसा को उस साल पैदा करवाता जिस साल हारून पैदा हुए थे, कहानी ख़त्म। सीधी सी बात थी, मूसा पैदा हो जाते। लेकिन एक तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाना चाहते थे, दूसरी एक और वजह थी अगर मूसा उस साल ना पैदा किए जाते, और वो क्या थी कि मूसा को फिर महल के करीब फटकने ही कौन देता। असल में ये तो तैयारियां हो रही हैं ना। आप साथ साथ सूरह यूसुफ को भी सोचते जाए ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम कभी उस दौर के बादशाह बन सकते थे अगर इतने मुश्किल हालात में से गुजरते हुए अज़ीज़े मिस्र के घर में ना परवान चढ़ते। उधर अज़ीज़े मिस्र का घर था, इधर अल्लाह ने मूसा के लिए फिरौन का घर चूज़ किया। उस साल में मूसा का पैदा किया जाना हिकमतों से भरा हुआ था, ताकि मूसा अलैहिस्सलाम उन हालात को परख लें। जहाँ भी इंसान ने तबलीग करनी होती है ना, तो उसको वहाँ के हालात को जानना और उनके मसाइल को जानना बहुत ज़रूरी होता है। खैर, मूसा की माँ का तذکرہ कर दिया गया, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ करके, कि हमने मूसा की माँ से कहा कि अपने बच्चे को दूध पिला। क्या ये हुक्म सिर्फ मूसा की माँ को था? बाकी बच्चों की माँ को क्या हुक्म है कि इनको डब्बे का दूध पिलाओ? नहीं। वल वालिदाती युर्दीन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, और माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल। क्यों? इसलिए कि बच्चा माँ के दूध से जिस तरह जिस्मानी प्रोटेक्शन लेता है ना, आज साइंस कहती है कि माँ के दूध में एंटीबॉडीज़ होती हैं, इम्यूनिटी होती है, कि बच्चे के जिस्म में कोई जरासीम आता है ना, तो माँ के दूध के साथ ही वो जरासीम मर जाता है। बिल्कुल एक अल्लाह ताला ने, जिसको आप कह लें कि एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स करवाया हुआ है बच्चों को माँ के दूध के ज़रिए। जो बच्चे माँ के दूध पे पलते हैं उनको डायरिया बहुत कम होता है, उनके मोशन में बू नहीं होती, कै वगैरह नहीं आती। इसी तरह याद रखिए कि जैसे माँ के दूध से बच्चे को जिस्मानी तौर पे सुकून और ख़ुशी मिलती है ना, इसी तरह माँ का दूध बच्चे के लिए रूहानी तौर पर भी इम्यूनिटी पैदा करता है। शर्त क्या है कि माँ उम्मे मूसा जैसी हो। नेक माएँ बच्चों के लिए बड़ी खुशबख्त माएँ साबित होती हैं। हज़रत उमर से एक मौके पे एक शख्स ने जब अपने बेटे की नाफरमानी का तذکرہ किया और कहा कि इसको डांटें, इसको समझाएं, तो उस बच्चे ने कहा कि उमर फारूक, मुझे आप जो चाहें कह दें, लेकिन बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। और वो क्या कि बेटा होने के नाते मेरे बाप पर क्या हकूक थे, क्या मेरा हक था। उस पे हज़रत उमर ने जो बात कही थी, कहा कि तेरा पहला हक तेरे बाप के ज़िम्मे ये था कि तुझे एक नेक माँ देता, एक अच्छी माँ देता। बस उसने कहा यहीं रुक जाए, इसने मुझे अच्छी माँ नहीं दी, इसने एक मजूसी औरत से शादी की, फायर वर्शिपर थी, फिर मेरा नाम अच्छा नहीं रखा, ज्वाला नाम रखा, बेकार नाम, और तीसरा ये कि मेरी तरबियत माँ ने इस्लाम पे नहीं की। तो हज़रत उमर ने कहा कि ऐशोस तुम चले जाओ, कसूर तुम्हारा इसका नहीं। तो अन अर्दी ई ही पे बात करें तो साथ साथ मूसा की ज़िंदगी से हम अपने लिए बातें लेते जाएं कि माँ जब नेक होती है, जब हम रिश्ते करते वक्त लड़कियों को सिर्फ उनके हुसन, उनकी पतली कमर और उनकी आंखों से नहीं देखें बल्कि उसको आने वाली नस्ल की नज़र से देखें, तो नेक माँ का दूध उसका सर है। यहाँ आपको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह अपनी अगली चंद आयतों को साथ पढ़ते हुए, इसीलिए हैंड पहले ही दे रही हूँ कि बस दफ़ा हालात ऐसे आते हैं, स्पेशली जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, चारों तरफ गैर मुस्लिम अफकार हैं, कल्चर है, कहते हैं बच्चों को लेके भाग जाओ किसी भी जगह पे, हरम के अंदर ले जाओ इनको, काबे में लेके बैठे रहो क्योंकि बच्चों पे असर ना आए। ये दुरुस्त नहीं है। हम इन आयात में देखेंगे कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है मूसा की ज़िंदगी में, फिरौन और फिरौनी कल्चर जो था उस दौर में वो कौन सा था, बिल्कुल परवर्टेड, मुशरिक, शिर्क वाला, गलत तरीके। मूसा की माँ कौन सी थी, नेक औरत थी। दो में से एक चीज़ हो सकती थी कि मूसा सिर्फ अपनी माँ के पास ही पलते, बहुत अच्छी तरबियत हो जाती, बहुत खैर मिलती, लेकिन मूसा उस बदलते हालात के तकाजे पूरे ना कर पाते। दूसरी सूरत थी कि मूसा को फिरौन के पास भेज दिया जाता, माँ से ताल्लुक कट जाता, इसमें डर क्या था कि माहौल का असर बिगड़ जाता, कटी हुई पतंग की तरह मूसा फिर फिरौनी कल्चर का शिकार होते। अल्लाह ताला की ज़ात ने क्या इंतज़ाम किया, दोनों चीज़ें साथ रखी। पहले मूसा की माँ ने दूध पिलाया था तभी अगले हालात होंगे, इसीलिए मैं यहाँ ये लंबी बात कर रही हूँ। अगर मूसा की माँ ने पैदा होते ही उनको अपने की बजाय किसी और का दूध पिलाया होता तो मूसा कभी वापस अपनी माँ को ना मिलते, वो उसी दाया का पी लेते जिसका पी रहे थे किसी और का। तो यहाँ से आप देखिए कि दूध का असर, माँ के दूध से मूसा की रूहानी तरबियत होगी आगे जाके, और फिरौन के घर में रहने से सियासी तरबियत होगी ताकि कल के आने वाले दौर के तकाजों को मूसा पूरा कर सकें, एटिकेट्स और मैनर सीखें। आज के बच्चे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में पलते हैं या वेस्टर्न माहौल के तहत पलते हैं, ये उन बच्चों की नस्बत इंतहाई ब्रिलियंट, इंतहाई खूबसूरत नस्लें साबित हो सकते हैं जो बच्चे बिल्कुल किसी पसमानदा मुल्क में रहते हैं। शर्त एक है कि माँ अच्छी हो जाए। अगर माँ नेक हो गई, माँ के दूध की तासीर बुढ़ापे तक नहीं जाती। खून का असर होता है ना, इस तरह दूध का भी असर होता है। तो यहाँ हम आगे चलते हैं, फिर कुछ बातें वापस पलट के कर लेंगे, लेकिन कहा दूध पिला, बेखतर पिला। ये यहाँ फिर एक और नोट कीजिएगा बात, और बच्चों की माएँ गौर से सुने ही आए थे, वैसे तो आप सुन ही रहे होंगे, लेकिन इशारा इसलिए कर देती हूँ कि बाज़ दफ़ा हम कुरान को सिर्फ उन हालात में सुन रहे होते हैं जहाँ वो होती हैं, अपने से रिलेट नहीं करते। इससे अगली आयतें हर उस माँ के लिए नसीहत हैं जो दीन के किसी मामले को बच्चों की वजह से छोड़ देती है, या अपने आप को मजबूर और बेबस समझती है, या पीछे हटती है। मूसा की माँ को पता था कि मेरे बच्चे को ख़तरा है, बिल्कुल था, पहली खबर पहली भी थी, घर घर दाया मौजूद थी। क्या किया शुरू में, क्या कहा, अर्द ई ही, पिलाओ दूध इसको। रिवायात में आता है कि 3 महीने और 3 दिन तक माँ ने बच्चे को अपने पास रखा, छुपाती रहीं, रिस्क लिया, दूध पिलाती थी, और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था क्या कि अगर कभी ख़तरा महसूस हो तो एक छोटा सा एक बना के ना बिस्तर सा तो दरिया के किनारे रख देती थी। इसका तस्करा आगे, फ़ाइज़ा खिफ़्ती अलैही, जब इसके बारे में तुझे डर हो, इसके बारे में तुझे खौफ आए, फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मी, तो डाल देना इसको दरिया में। कि जब देखो फिरौन के लश्कर आ रहे हैं, उसके गिरोह आ रहे हैं, तो बस फौरन बच्चे को दरिया में डालना। और वो कहते हैं एक टोकरी सी में बच्चे को रखती और रस्सी बांध देती, बच्चा खेलता रहता उधर, जब खतरा टलता उसको वापस ले जाती। का वला तखाफी वला तहसनी, और ना हिरासा होना और ना गमजदा होना, क्योंकि इन नारादूह इलैक, हम यकीनन उसको तेरी तरफ लौटा देंगे। वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और हम बनाने वाले हैं इसको रसूलों में से। यहाँ पे ज़रा नोट कीजिएगा कि वो माँ अल्लाह के हुक्म पे इतनी सच्ची साबित हुई कि अपनी गोद से निकाल कर बच्चे को दरिया की गोद में डालना गवारा कर लिया, क्योंकि फालकी हिफिल यम। इसको हाईलाइट करें, बच्चों की माएँ ख़ास तौर पे, पढ़ाने वालों के बच्चों की माएँ भी और पढ़ने वालों के बच्चों की माएँ भी। और फिर पूछें कि मूसा की माँ को कहा बच्चे को डाल दो दरिया में, माँ ने क्या किया? हाय ये मर जाएगा, हाय ये डूब जाएगा, माँ ने डाल दिया। فَالْتَقَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, پس دریا سے نکال لیے اسے فرعون کے گھر والوں نے تاکہ انجام کار وہ ان کا دشمن اور باعث رنج و علم بنے۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا, بے شک فرعون حامان اور ان کے لشکری کانو خاطئین, خطا کار تھے۔ کس معاملے میں خطا کار تھے؟ कि जिस बच्चे को वो अपने लिए एक अच्छी चीज़ समझ के उठा रहे हैं, वो बच्चा तो उनके जवाल का सबब बनने वाला है। या फिर आपको वही सबक मिल रहा है जो पहली आयत में हुआ था कि ज़ाहर फिरौन और उसके साथियों को वो बच्चा अच्छा लगा, उन्होंने उसको अपना बच्चा बनाना चाहा या उठाया, लेकिन वो बच्चा असल में वही था जिसको वो मरवाना चाहते थे, खता खाई उन्होंने। अब सारा मजमून वाज़ेह है, पीछे भी इस पर थोड़ी सी बात हुई थी कि मूसा की माँ ने कोई हीलो हुज्जत नहीं किया। ज़रा एक लम्हे के लिए लेके देखें, दरिया को लें, आप इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करें, किसी भी इस दरिया के किनारे बैठ जाएं या इमेजिनेशन में ले लें, और आपकी गोद का बच्चा, आपका शौहर, आपका बाप, आपकी माँ, आपकी सास, जो भी इज्जत वाला करीबी रिश्ता है, वो आपसे कहे ज़रा बच्चे को डालना, इसके पाँव लगाना पानी में, क्या करेंगे? हम कहते हैं नहीं, हम संभाल के रख सकते हैं, हम सोचते हैं हम अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं, अल्लाह कहता है दरिया में होगी, मैं करवाऊंगा। इन्ना रादूहु इलैक, और जो माएँ कहती नहीं मैं बहुत अच्छी हिफाजत करती हूँ, वो हर वक्त हो सकता है कि परेशान हो और डॉक्टरों के पास जाएं। अल्लाह महफूज रखे, मैं कोई किसी के बारे में बदगुमानी नहीं कर रही, लेकिन जो बात मैं अपने लिए पसंद करती हूँ मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर माएँ उम्मे मूसा की तरह अल्लाह के वादों पर यकीन करने लग जाएंगी ना, तो आप देखेंगे कि अल्लाह की मदद भी आएगी। ये हमारे मुश्किलात हैं कि पैदा होने से पहले बच्चे को इंजेक्शन लगवाते हैं और पैदा होने के बाद भी लगवाते रहे, फिर भी कहते हैं बच्चे बीमार हो जाते हैं। आपका है तो ईमान अपनी वैक्सीनेशन पर भी कोई नहीं है, अल्लाह के फैसलों पर तो अलग है। इतने मोटे कपड़े आप पहनाते हैं, फिर भी आपको उन कपड़ों पर कोई ईमान नहीं है कि ये कपड़े मोटे हैं बच्चे को सर्दी से बचा लेंगे। आप देखिए कि दो बातों का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने उम्मे मूसा को, अलकी और अर्दी, डालो इसको और दूध पिलाओ, दो बातों से मना किया। क्या? वला तखाफी वला तहजनी, खौफ और गम न खाना, ये ना रोती रहना हाय मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों वाली। मैं तो कहती हूँ आज माएँ पांच वक्त की नमाज ही पढ़ लेना बच्चों के साथ, तो दिल में बड़ा रहम खाती हैं अपने ऊपर कि हाय बच्चों वाली हो के भी पांच वक्त नमाज सही वक्त पे पढ़ लेती हूँ। दो बातों का हुक्म, दो बातों से मना, और फिर दो बातों का वादा। इन नारादूहु इलैक, हम लौटाएंगे आपकी तरफ। ये लफ्ज़ असल में रादून था, हम लौटाने वाले हैं, नून गिर गया मुजाफ की वजह से, तुझे वापस लौटाएंगे, ये हमारा वादा है। और दूसरा वजाइलूहु, ये भी जाइलून था, नून गिर गया, हु लग गया, हम इसको बनाएंगे मिनल मुरसलीन, मुरसलीन में से, जमा सालिम। अल्लाह ताला के वादे देखिए और माँ का हौसला देखें। क्या हमें भी अल्लाह पर इतना भरोसा है जितना हमें अपने वसाइल पर भरोसा है? अल्लाह के वादे जो है ना, ये कुरान पाक में कितने हैं ईमान वालों से, जो सब्र करेगा उसको अजर मिलेगा, जो नेकी करेगा अल्लाह उसको अजर देगा। पूरा कुरान अल्लाह के वादों से भरा पड़ा है। इब्राहिम से वादा किया, मुत्तकियों से वादा किया, वलयंसुरुन्नल्लाहुमैयंसुरुहु, जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। अल्लाह ताला कहते हैं यंसुरुल्लाह तंसुरकुम वयुसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी करेगा, तुम्हारे कदमों को जमा देगा। तो अल्लाह के वादे बास हालात और बास मौक़ों के लिए नहीं होते, ये हर दौर के उन लोगों के लिए होते हैं जिनके हौसले बड़े होते हैं। कुछ लोग हैं जो अल्लाह के हुक्म पे चलते हैं, कुछ नफ्स के पीछे लगते हैं। हम चलें तो नफ्स के पीछे और वादा मांगे अल्लाह से नहीं होगा। मूसा की माँ अगर कहती नहीं अल्लाह दरिया में तुम्हें नहीं डालती, सॉरी मेरे से ना ये उम्मीद रखिएगा, हाँ वैसे मेरे बच्चे को बचा लें। फिरौन ने आके ना माँ की गोद से भी निकाल के ले जाना था बच्चे को। मौत आती है ना बच्चे को, तो नबी की गोद में से भी बच्चे को ले जाती है, और बचा तो मूसा दरिया के अंदर भी बच गया। एक कहावत याद आ गई मुझे, इसके बारे में याद नहीं कि मैंने कहाँ पढ़ी थी, कि किसी ने मलकुल मौत से पूछा कि तुम्हें कभी किसी की जान लेते हुए रहम आया? कहने लगा कि तीन मौके पे मुझे रहम आया, तीन लोगों पे। कहा कब? कहा कि एक तूफाने नूह के वक्त, कि जब तूफान सारी जमीन पे आ गया तो एक माँ थी और उसकी गोद में छोटा सा बच्चा था, तो जब पानी उस माँ तक आया तो उसने उस बच्चे को हाथ से ऊपर किया, हत्ता कि उसने अपने हाथ से भी ऊपर बच्चे को यूं कर लिया कि खुद डूब भी गई तो मेरा बच्चा ऊपर है। मुझे उस वक्त बड़ा ही तरस आया उस बच्चे पे कि आज इसकी माँ मर जाएगी तो ये बच गया तो कैसे बचेगा, इस पे तरस आया। कहा अच्छा और किस पे तरस आया? कहा कि एक मुझे उस शख्स पे बहुत तरस आया कि जिसने बड़े तपाक से जन्नत बनवाई, ये तारीख में एक नाम गुजर चुका है शद्दाद का, कि उसने दुनिया में जन्नत बनवाई। पूछता जाता था जन्नत में क्या कुछ होगा, सोना चांदी ये वो, और वो सारी चीज़ें जमा करके कई साल की कोशिशों से उसने जन्नत बना ली, बाग बना लिया। जब उसने बना लिया ना तो उसके लोगों ने बताया कि अब बिल्कुल तैयार है, तो बड़ी शान दिखाता हुआ तपाक से वो उस बाग की तरफ जा रहा था। अभी कदम भी अंदर नहीं रखा तो मलकुल मौत को कहा गया कि इसकी जान ले लो। तो मलकुल मौत ने कहा कि उस शख्स की जान निकालते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने प्यार से इसने बनवाई, एक दफ़ा अंदर तो चले। तीसरी बात चाहे इसमें थी या मैं भूल गई हूँ, या दो ही बातें थी, तो उसको पता है क्या बताया गया? कि तुम्हें पता है तुम्हें दो लोगों पे तरस नहीं आया, ये एक ही शख्स है, वही बच्चा जिसकी माँ समंदर में डूब गई थी वही बच भी गया और फिर बड़ा हुआ और ये शद्दाद बन के वही बच्चा दुनिया का इतना बड़ा बादशाह भी बना। माएँ कहाँ खिला पिला सकती हैं, माँ पालती है बच्चे को, बाप खिलाते हैं। बिन माँ बाप के बच्चे को अल्लाह शद्दाद बना दे और कोई शद्दाद बन के दुनिया में अपनी जन्नतें बनाए, अल्लाह एक लम्हे में उसको धक्का दे के दुनिया से गिरा दे, ये अल्लाह के वादे हैं। इन्ना रादूहू इलैक, हम लेकर आएंगे तेरी तरफ वापस, और कैसे लाएगा आगे जाके देखते जाएं आपको पता चलेगा। ये जो लफ्ज़ है ना फल तकाहू, ये लाम काफ और तोय से है, लुक्ता, ये हदीस में एक पूरा चैप्टर है, लुक्ता गिरी पड़ी चीज़ का बाप, ज़मीन से ऐसी चीज़ का उठाना जिसके मालिक का पता ना हो। मिनहाजुल मुस्लिम बुक है, उसके अंदर पूरे लुक्ते के मसाइल हैं कि कोई कहीं गिरी पड़ी आपको चीज़ मिले तो कहाँ उसको रखें, क्या करें, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिरौन के महल्लात थे वो समंदर के किनारे, तो वैसे ही लोगों को बहुत शौक है, तो वहाँ ये खुद भी कहीं होगा, इसकी बीवी सारे थे, और वहाँ जाके अब क्या मामला हुआ आप ज़रा इमेजिनेशन में लाएं। एक बच्चा दरिया की लहरों में तैरता हुआ आ रहा है, संदूक है, और वहाँ सब इंजॉय कर रहे थे, कोई होगा बीच व्यू या कोई हट लिया होगा वहाँ जाके खुशी मनाने का, तो वहाँ फिरौन की बीवी की नज़र पड़ी बच्चे पे। वकालतिम रातु फिरौना, और कहा फिरौन की बीवी ने, या फिर नोट कीजिए इमरातु फिरौन आया, शर्म दिलाई गई है फिरौन को क्योंकि बाद में इस औरत को ईमान नसीब हो रहा है। और हज़रत आसिया का जहाँ भी तذکرہ आया है कुरान में, इमरातु फिरौन ही आया है ना, दुख की बात। कैसी कैसी आसियाएँ होती हैं और उनको फिरौन जैसे जालिम शौहर मिल जाते हैं। क्या हुआ अगर किसी को किसी जालिम से वास्ता पड़ गया? कोई बड़ी बात नहीं, तुम आसिया बन जाओ, तुम अल्लाह के इशारों को समझो, ये किताब तुम्हें रास्ता दिखा देगी, تو اس کا کوئی بہترین بدل بھی دے دے گا. تو امرأت فرعون, فرعون کی بیوی کیا کہا, قرت عین لی ولک, کہنے لگی ہے میرے سرتاج یہ بچہ تو میرے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا, لہذا لا تقتلوہ اس کو قتل نہ کرو. کیوں, اس عین ينفعنا شاید ہمیں یہ نفع دے. کتنا نفع دیا بی بی آسیہ کو اس بچے نے, کہ اسی بچے نے جب جادوگروں کے سامنے اپنا معجزہ دکھایا تو بی بی آسیہ کو ایمان مل گیا, مل گیا نا نفع. او نتخذہ ولدا, اور ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں, اڈاپٹ کر لیں, پال لیں. وہم لا یشرون, اور وہ تو جانتے بھی نہ تھے, ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, اللہ نے کیا فیصلے کر لیے. اب یہاں روایات میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر فرعون غصے میں آ گیا, کہنے لگا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا, میری تو نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر فرعون اس وقت یہ نہ کہتا تو بی بی آسیہ کی طرح فرعون کو بھی ایمان نصیب ہو جاتا. اور روایات میں یہ تک آتا ہے کہ اس وقت تک اولاد نرینہ سے محروم تھے. آپ دیکھیے کہ بچے سے ہر ایک کو پیار ہوتا ہے, ہنستا بچہ سب کو اچھا لگتا ہے, روتا کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا. اب فرعون کے سامنے جب وہ بچہ آیا, پتہ چل گیا ہوگا, ہو سکتا ہے یہ بنی اسرائیلی کا بچہ ہے, یہ ماں نے ڈال دیا. کہتے ہیں کہ فرعون نے کوشش بھی کی اس کو قتل کرنے کی. آپ پوری سٹوری کے اینڈ پہ دیکھیں گے کہ کتنی بار موسیٰ کے قتل کی کوششیں ہوئیں, لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تلواروں کی بوچھاڑ میں سے لوگ بچ کے آ جاتے ہیں اور بستروں پہ لوگ مر جاتے ہیں امن اور چین میں. کتنی پیاری موت ہے جو اللہ کے حکم میں آئے اور اللہ کے راستے میں آئے. اللہ کی ذات نے پیچھے ہی, اگر آپ آیت 8 کے ایک لفظ پہ غور کریں نا, تو اب یہاں سے آپ کو تھوڑی سی بات اور اچھی سمجھ آئے گی. وہاں آپ نے دیکھا کہ فل تقہ آل فرعون کے بل لی آ رہا تھا, دیکھا آپ نے, لی یکون لہم ادوون. یہ جو لی ہے نا, عام طور پہ تاکید کے لیے آتا ہے نا, لی واسطے کے لیے, لیکن یہاں لام عاقبت کا ہے, انجام. لام کے عربی زبان میں بہت سارے معنی ہوتے ہیں, ان میں سے ایک ہے عاقبت, انجام. اس بچے کو اٹھا لینا, اس کو اپنے گھر میں پالنا, نتیجہ تن وہی بچہ ان کا دشمن بن گیا. بعض دفعہ لوگ گری پڑی چیزیں کو فائدہ مند سمجھ کر اٹھا لیتے ہیں اور وہی چیز مشکل میں ڈال دیتی ہے, اگر وہ چیز چوری کی ہو. فرعون کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہوئی, کوشش اس نے کی مارنے کی, لیکن کہتے ہیں ایک تو بچہ بڑا پیارا تھا, کہتے ہیں کہ انگوٹھا منہ میں دیا ہوا پیارا سا بچہ, تو اللہ تعالیٰ کے وعدے قول کے مطابق کہ والقیت علیک محبتم منی, اے موسیٰ میں نے تو آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت بہت ڈالی ہے. اور آپ سب اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ بچے محبت اپنے نصیب سے لیتے ہیں. کچھ بچوں کے اندر فطری طور پہ بڑی کشش ہوتی ہے, فیچرز کی کوئی بات نہیں ہے, کالا بھی بچہ ہو سکتا ہے, گورا بھی ہو سکتا ہے, لیکن بعض بچے واقعی بڑا پیار لیتے ہیں, بھول پن, معصومیت, لاڈ سے. موسیٰ علیہ السلام پہ تو اللہ نے خود اپنی طرف سے موسیٰ کے لیے محبت ڈالی ہوئی تھی, فرعون نہیں مار سکا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ بچپن میں موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی, اسے یہ پتہ تو چلتا ہے کہ داڑھی فرعون کی بھی تھی, کلین شیو وہ بھی نہیں تھا اس دور میں, کیونکہ تب تک لوگ پھر بھی فطرت پہ تھے. اب تو غیر فطری ہو گئے نا, عورتیں مرد بن گئی, مرد عورتیں بن گئے. تو بہرحال جب اس کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا تو اس نے اس کو بدشگونی سمجھا, کس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا. آج بھی لوگ کہتے ہیں داڑھی کا واسطہ اور شاید پگڑی کا واسطہ. پھر کہا کوئی بات نہیں, یہ تو بچہ ہی ہے, چھوڑو اس نے کیا کرنا ہے. یعنی کئی مواقع ایسے آئے کہ فرعون اس کو مارنا چاہتا تھا, لیکن بیوی فرمائش کرتی گئیں کہ لا تقتلو, اس کو نہ مارو. اللہ بچا کے لے آتا ہے نا, کیا اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو نہیں بچا سکتا؟ دعا یہ کیا کریں اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ ان کو اپنے راستے کے مجاہد بنا. اور جن ماؤں نے یہ دعا دل سے کی ہے نا, ان کو اپنے بچوں کو بچپن میں ہی گرم سرد ٹھنڈے بھوکے پیاس کا مزہ چکھانا پڑے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بچوں کو لگژریز میں رکھیں, پالیں, پیدا ہونے سے پہلے ان کے میچنگ بیڈ سیٹس اور ان کے نرم گدے بنا لیں, اور ان کو اتنا عادی کر دیں اپنا کہ آپ کی گود کے سوا وہ چین نہ لے, اترے تو روئے, کسی دوسرے کو دیکھے نہ, اور کل وہ مجاہد بن جائے. نہیں ہوتا. یہ دودھ کا اثر بھی ہے, یہ پرورش کا اثر بھی ہے. موسیٰ کی ماں نے سمندر میں ڈالا، یہ موسیٰ کی اب تربیت کا ایک سلسلہ تھا۔ کبھی آپ نے غور کیا جو بچے دیہاتوں میں پلتے ہیں، غربت میں پلتے ہیں، چلے یہ کہہ لیں، جوتے بھی نہیں پہننے ہوتے، اسی وقت اسی بڑی امیر بیگم صاحبہ کا بچہ کتنا لپٹا لپٹایا ہو سکتا ہے، اس کو ڈاکٹر سے لے کے آ رہے ہوں، تو پیچھے سرونٹ کوارٹر میں رہنے والے ڈرائیور کا بچہ بغیر جوتی بغیر ٹوپی کے پھر رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا غریب کو ان کا حال کے۔ اور جو جتنا فلٹر کر کر کے پانی پلاتے ہیں نا، ان کے بچوں کے پیٹ اتنے ہی خراب ہیں۔ ہم نہیں کر سکتے پرورش، ہم نہیں پال سکتے، سخت جان بنائے اپنے بچوں کو۔ میں نہیں کہتی مٹی ڈال کے پانی پلائیں، لیکن فلٹر والا پلانا چھوڑ دیں۔ یہ کوئی پہلا بچہ دنیا میں نہیں پیدا ہوا جو آج آپ کی گود میں آ گیا۔ میں نے دیکھا ہے بعض مائیں اپنی راتوں کی نیند برباد کرتی ہیں۔ ایک ماں کو میں جانتی ہوں کہ رات کو بھی جتنی دفعہ بچہ اٹھتا تھا، کچن میں جا کے فلٹریشن میں فیڈر ڈال کے اس کو بوائل کر کے گرم، پھر فریش پانی دودھ ڈال کے لا کے دودھ پلاتی تھی۔ ابھی شاید ہی بیچاری سیدھی لیٹتی ہوگی، بچے کو صاف کرے، پھر بھوک کہتی، رات پوری میں شاید 3 دفعہ وہ جا کے فیڈر بوائل کرتی ہے، پھر وہ دودھ بناتی ہے، پھر پلاتی ہے، اور پھر رات ختم۔ آپ بتائیں، صبح وہ قرآن پڑھنے والی اگر ہوتی تو آ سکتی تھی؟ اور اس بچے کو تو واقعی اگر ہلکا سا وائرس کیا جراثیم بھی چلا گیا، وہ تو بیمار ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، پھول باہر پڑے ہوئے ہیں، فطرت کے اندر دیکھیے، بچہ زیادہ نازک ہے کہ پھول؟ ان کو سخت جان کریں، یہ کوئی ہماری دنیا کی زندگی بنانے کے لیے نہیں آئے، یہ بچے تو ہمارے آخرت کے اکاؤنٹس ہیں۔ پرورش سے پتہ چلے گا کہ کل کیا بنے گا۔ اور لڑکے کو اب لڑکی بنا کے پالیں، اتنا نازک اندام کر دیں، وہ لڑکا پھر بعد میں تلوار کیا قلم بھی نہیں پکڑ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح سے حفاظت کروائی کہ موسیٰ اب ماں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ وہ دن موسیٰ کی ماں کے لیے کیسے ہوں گے، شاید ہی کوئی اس کا اندازہ لگا سکے۔ بچہ غائب ہے، کہتے ہیں کہ وہ روز جب بھی اللہ کا حکم ہوتا تھا تو جب خوف محسوس کرتی تھی تو بچے کو اس میں ڈالتی تھی۔ جس دن یہ واقعہ ہونا تھا، جلدی میں اس نے دریا میں تو ڈال دیا، لیکن رسی باندھنا بھول گئی۔ اب اللہ عالم، حقیقت کے کئی کہانیاں سنی ہوئی ہیں اس کے بارے میں، آپ البدایہ اور نہایا کو پڑھیں، بے شمار کہانیاں ملتی ہیں۔ اب وہ دن ماں کے لیے کیسے تھے، اتنے پیارے الفاظ میں اللہ کی ذات نے یہاں پیار سے بتایا کہ وس بہ فؤاد امی موسیٰ فارغا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ فارغا کا لفظ ہے، فارغ ہو گیا، یعنی موسیٰ کے علاوہ ہر غم سے پاک ہو گیا۔ جب کوئی چیز اتنی شدت سے اثر انداز ہو جائے کہ اور سب کچھ بھول جائے، تو اس کیفیت کو فارغن کہتے ہیں۔ غم کی شدت بندے کو سب کچھ بجھوا دیتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا، اسپیچ لیس ہو گیا، ڈرینڈ، سوچ نہیں رہی، عقل کام کرنا چھوڑ گئی۔ قیامت کے دن کے مجرموں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا، کیا فیدتہم ہوا، ان کے دل اس دن خالی ہوں گے۔ آپ کوئی ایسا تجربہ یاد کریں کہ خدا نہ خواستہ بچہ کھو جائے، بچہ اسکول سے ہی نہ آئے، لیکن یاد رکھیے گا کہ بچے کا غم واقعی بہت بڑا ہوتا ہے، اور اللہ اتنے بڑے غم دے کے پھر اپنے دین کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہم جب اپنے بچوں کے ہی غموں میں کھوئے رہتے ہیں تو ہمیں انسانیت کے بچوں کا غم کم ہی لگتا ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ بچہ تو ہے ہی نہیں اور دریا میں ڈالا تھا چلا گیا، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایسے ہی رکھنا ہے، بچہ تو تیرتا ہوا چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی ان قادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس معاملے کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قریب تھا، یعنی اٹ واز سو پاسبل، اٹ واز ویری کلوز ٹو ریئلٹی کہ وہ اس اپنے غم کو کھول دیتی۔ لتبدی بھی، یعنی ماں تھی نا، شور مچا دیتی، ہائے لوگوں میرا بچہ نہیں مل رہا، لوگوں کو پتہ چلتا، اپنوں کو بھی پتہ چل جاتا، بیگانوں کو بھی چلتا، لیکن کیوں نہ اس نے یہ کہا، لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل پہ پتھر نہ رکھ دیتے، اگر ہم اس کے دل کو باندھ نہ دیتے۔ کیوں ہم نے اس ماں کے دل کو باندھا کہ اپنے غم کو پی جاؤ، تاکہ لی تکون من المؤمنین، تاکہ ہو جائے وہ ایمان لانے والوں میں سے۔ دو معنی ہے کہ اگر ماں ظاہر کر دیتی ہے میرا بچہ ہے، تو بچہ تو مر چکا ہوتا، دنیا میں ہی چلا جاتا ختم اسی وقت، مومن ہی نہ بن پاتا۔ اور دوسرا، اس عورت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ کے اس وعدے پہ یقین آ جائے کہ میرا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ بیٹھے تھے और कैदियों में से एक औरत का बच्चा बाहर धूप में आ गया और रोने लगा, और माँ बच्चे को यूं ढूंढती फिर रही है बेचैन होकर, और जब बच्चे को देखा तो उसके तलवे चूम लिए कि मेरे बच्चे के पांव जले, और अल्लाह के नबी इस मंजर को देख रहे थे और आंखों में आंसू थे। कहा, क्या ये माँ खुद बच्चे को आग में डालेगी? कहा, नहीं डालेगी। कहा, इतनी मोहब्बत है इस बच्चे से माँ को, तो याद रखिए कि जिस जात को 70 माँ से ज्यादा प्यार है, फिर वो बच्चों को कहाँ डूबने देगा? आप सोचते हैं आपके बच्चे से आपको प्यार है? उसको अल्लाह की नजरों से देखे, आपका प्यार तो नीचे चला जाएगा। उसको 69 टाइम ज्यादा यानी 70 गुना ज्यादा प्यार है आपसे। और यहाँ बास कहते हैं कि मोमिनीन मोकिनीन के मानों में, यकीन के मानों में, और ये ईमान के ऊपर का दर्जा होता है। ये जो लफ्ज़ है ना, रबतना अला कुलूबिहा, ये सीने पर हाथ बांधना, पीछे भी हम मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में पढ़ चुके हैं कि बहुत गम हो, यानी ये एक आपको अमल की बात बता रही हूँ, कभी आपका दिल बहुत धक धक कर रहा हो या कोई खौफ है या अंदेशा है, तो सीने पे, ये दिल पे हाथ रखा करें। नबी सल्लम रखते थे तो उससे दिल बन जाता है, जैसे कभी होता है ना थक था, तो अब यूँ हाथ रख, साइंस की रोशनी में भी इससे आपका दिल जो है ना दबता है, थोड़ा सा वो एक काबू में आता है, जैसे हम दूसरों को थपकियाँ देते हैं ना। अल्लाह के नबी सल्लम भी बहुत गम में या हय्यू या कय्यूम बिरहमति का अस्तगीस पढ़ा करते थे। इस आयत को बार बार पढ़ने को दिल चाहता है, बस बहा फुआद उम्मी मूसा। यहाँ फुआद क्यों आ गया, कल्ब क्यों नहीं आया, नफ्स क्यों नहीं आया? दिल के कितने लफ्ज़ हैं? फुआद दिल के जज्बात को कहते हैं, जो इमोशंस होते हैं ना दिल में, जहाँ उस हिस्से को फुआद कहते हैं। अफिदा इसी की जमा है, यानी माँ के जज्बात को पेश करने के लिए यहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब माँ थी ना, सबर किया, इससे क्या पता चलता है कि जितना बड़ा गम आए ना अल्लाह के रास्ते में, दीन की मुश्किलात, अब ये असल में तो अल्लाह का हुक्म मानने की सजा ही भुगत रही थी ना वो, दूसरे लफ्ज़ों में सजा तो नहीं है ये, लेकिन अल्लाह का हुक्म मानती गई, मुश्किल आती गई। अगर वो अपना गम दूसरों को सुनाती तो फिर क्या होता? बच्चा डूब जाना था। या अमल की बात लिखें, सारी ज़िंदगी में जो गम बीमारियां दुख आते हैं, जिसको मर्ज़ी सुनाए, आपकी मर्ज़ी है, इन नमाश को बसी व हुस्नी लल्ला, वहाँ आई थी दुआ, यहाँ ये बात आ गई, जिसको सुनाए शौक से सुनाए, आपकी मर्ज़ी, मैं तो इसको कतन नहीं पसंद करती और हुक्म भी नहीं है। लेकिन दीन के रास्ते में कोई मुश्किल आए, कभी किसी से शेयर ही ना करें, तौफीक छिन जाएगी। हम जब अपने दीन के गम दूसरों को सुनाते हैं और उनको सुनाते हैं जिन्होंने अभी दीन चखा नहीं होता, तो वो गम तो नहीं दूर कर सकते, हमें दीन से दूर कर लेते हैं। देखिए, दूसरों को सुनाएंगे क्या करेंगे, जान लेंगे ना, बस खबर होगी, आपका वो मसला हल कर सकते हैं, यही हल होगा कि दीन को छोड़ दें, तो वो आपके लिए एक उससे बड़ा गम बन जाएगा। जिसके रास्ते में गम आते हैं ना, उसी को सुनाएं, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुस्नी इलल्लाह।